उस तरफ से तकबीरों की आवाज़ें आ रही थी, अजानों की आवाज़ें आ रही थी, वो लोग भी जमात से नमाज़ फिर क्या सबब हुआ कि वो फरजंदे रसूल को खत्म करने पर आमादा हो गए? क्या आमिल, क्या फैक्टर्स ऐसे आ गए कि जिनकी वजह से वो नवासे रसूल को कत्ल, न सिर्फ कत्ल करने पर आमादा हो गए बल्कि शहीद कर दिया? तो सबसे पहला आमिल इस सिलसिले का ये है कि रसूल खुदा की रहनत और रसूल खुदा वाकई करबला रसूल खुदा की रहनत के निसफ सदी बाद पेश आया। 11 हिजरी में रसूल खुदा की वफात और ये 61 हिजरी में वाकई करबला पेश आया। पूरी निसफ सदी 50 साल यानी एक नस्ल, यानी एक जनरेशन को 50 साल एक जनरेशन 50 साल पर मुश्तमिल होता, यानी हमारी एक नस्ल तबाह हो गई। इसका मतलब आपके 50 साल तबाह हो गए। मुहावरे में जो कहा जाता है हमारी एक नस्ल तबाह हो गई, यानी 50 साल आपके खराब हो गए। तो 50 साल निस्फ सदी का अरसा ज्यादा नहीं होता, यानी इस्लाम की पहली नस्ल ही ने फर्जंदे रसूल को शहीद कर दिया। 50 साल का मतलब यह है कि पहली ही नस्ल ने, यानी फर्स्ट जनरेशन इस्लाम का, जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ इस्लाम, वही फर्जंदे रसूल की शहादत का सबब बन गया। तो वो क्या आवाज़ें थी कि जिसकी बुनियाद ये लोग, इनमें कुछ लोग अक्सर तो सहाबी जाते हैं, सहाबा के बेटे हैं, बर्जस्ता सहाबा के बेटे हैं। मसलन उमर इब्ने साद, ये साद कौन है? साद इब्ने अबी वक़ास है। साद इब्ने अबी वक़ास तन्हा आदमी है जिसने कादिसिया की जंग लड़ी। कादिसिया की जंग साद इब्ने अबी वक़ास ने तन्हा लड़ी थी और फतेहमंद होकर वापस लौटा था। और रसूल खुदा के नजदीक एक मकाम रखता था। उसका बेटा यानी कादिसिया के जंग का सरदार का बेटा करबला में हुसैन के मुकाबले में जो लश्कर है उसके, उस लश्कर का सरदार बन गया। तो क्या सबब बना? और उमर साहब कोई जाहिल अनपढ़ आदमी नहीं था, उमर साहब नमाज पढ़ाने वाला था, इमाम जमात था, पढ़ा लिखा समझा जाता था, तभी आगे पढ़ाया गया था। क्या सबब बना के करबला में आ गया रसूल खुदा के नवासे के मुकाबले में? और इस तरह कई लोग ऐसे हैं जो अगर आप उनका कनेक्शन देखेंगे ऊपर, तो किसी ना किसी सहाबी के बेटे हैं या फिर किसी ना किसी सहाबी के भतीजे हैं। यानी इस्लाम की बर्जस्ता शख्सियतों की औलादे हैं रिश्तेदार, जो बज़ाहिर इस्लाम से भी मोहब्बत करते थे, रसूल खुदा से भी मोहब्बत करते थे और बाज़ मकामात पर उन्होंने इस्लाम के लिए कुर्बानियां भी पेश की। तो फिर क्या सबब बन गया करबला में रसूल खुदा के नवासे के मुकाबले में आ गए? तो सबसे पहला जो सबब है वो है, अगर एक लफ्ज में कहा जाए तो रजा। इससे पहले यहीं से मैं अर्ज कर रहा था कि रजा शियों का एक अकीदा है। रजअत के माना है पलटने की, पलटना है। हमारा अकीदा यह है कि हमारे चंद अइमा मासूमी, एक जमाना ऐसा आएगा जरूर से पहले कि हमारे चंद अइमा रजअत करेंगे, पलट कर आएंगे इस दुनिया में, पलट कर आएंगे और बास काम अंजाम देंगे, फिर उनकी रजअत होगी। मसला यह है कि रजअत का अकीदा खुद हमारे लिए हल नहीं, हकीकत तो यह है, हम शियों के लिए हल नहीं। साहिब के हम दूसरों को समझाएं कि रजत का अकीदा क्या है, लेकिन रखना है। शियों की हलातों में से यह बतलाया गया है कि रजत का अकीदा रखना है। सिफात शिया में हदीस में नकल है कि जो रजत का अकीदा नहीं रखता वो हम शियों में से नहीं। मुश्किल हमारी मुश्किल है, मुश्किल यह कि हम समझ नहीं सके रजत के अकीदे को। जब समझ नहीं सके तो समझाने की भी हमारे अंदर सलाहियत नहीं है। जब समझाने की सलाहियत नहीं है तो जब भी हमारे सामने रजत का मसला चढ़ता तो कोशिश करते कि किसी तरह टाल के गुजर जाए। एक रजत होती मासूमी की रजत, जो हमको हमारा बुनियादी अकीदा है, शिया शिया नहीं होता जब तक रजत का अकीदा न रखे। एक होती उम्मतों की रजत, उम्मतों की रजत क्या होती? उम्मतों की रजत ये है कि अच्छाई से बुराई की तरफ पलटना या बुराई से अच्छाई की तरफ पलटना, ये उम्मतों की रजत है, कौमों की रजत है। रसूल खुदा की 23 साल जहमतों के नतीजे में चंद लोग मुसलमान हुए, चंदों मुसलमान होने के बाद वो तमाम तर जाहिली अखदार, जमाने जाहिलियत के अखदार उन्होंने छोड़ दिए। छोड़कर इस्लामी अकदार को अपना लिया। देखिए सबसे अहम बात यह है कि अकदार पहले हमारे लिए वाज़ेह होना चाहिए, अकदार कहते किसी को, अकदार कद्र की जमा है। कद्र यानी वैल्यू, यानी आप अपनी अपनी जिंदगी में किन चीजों को वैल्यू अहमियत देते हैं। आप सच्चाई को अहमियत देते, आप हिसाब को अहमियत देते, आप कुर्बानी के जज्बे को अहमियत देते, आप मजलूम की हिमायत को अहमियत देते, ये आपके अकदार है। और अकदार के मियार, इन मियारों पर आपने अपने अकदार को वजा किए, यानी आपके पास एक इंसान की इज्जत और तकरीम का मियार क्या है? पैसा, तस्कीन औलाद, धन दौलत, ये आपके नजदीक किसी इंसान की तकरीम का मियार है या फिर कोई और मियार है? तो इन चीजों को कहा जाता है अकदार। तो रजत जो जिस बात की हुई, जिस जो सबब बनी बात है करबला में बर्जस्ता सहाबियों के बेटे भी रसूल खुदा के नवासे के मुकाबले में आकर रसूल खुदा के नवासे को शहीद कर दे, सबसे बड़ा आमिल वो है रजत। रजत किस तरफ, रजत किस तरफ पलटे वो लोग? वो लोग इस्लामी अकदार से जाहिली अकदार की तरफ पलट गए, जमाने जाहिलियत के दौर में पलट गए। और अकदार को तब्दील करना, अकदार को अकदार की तरफ पलटना एक दो दिन की बात नहीं होती, तदरीजी अमल। हम समझते हैं कि मुसलमान बनना एक लम्हे का काम है, कलमे शहादतें जारी कर दी मुसलमान बन गए। कलमे शहादत है, इस्लाम में दाखिला है। मुसलमान बनने के लिए तदरीजी अमल है मुसलमान बनना। जिस हद तक आप इस्लामी अकदार के पाबंद बनेंगे उस हद तक आप मुसलमान बनेंगे, जिस हद तक इस्लामी अकदार को आप अपनाएंगे उस हद तक मुसलमान बनेंगे। बहिला मुसलमान है, मुसलमान बनना तदरीजी अमल है और अकदार को अपनाना भी एक तदरीजी अमल है, फौरन फौरन होना हो जाने वाले। हाँ अलबत्ता अकदार को छोड़ना भी तदरीजी अमल है। जिस तरह से एक इमारत है, एक इमारत को बनाना एक तदरीजी और सब्र आजमा अमल है, यानी आपको एक वक्त सब्र करना पड़ता, एक साल सब्र करना पड़ता, डेढ़ साल दो साल सब्र करना पड़ता, तब जाकर एक इमारत बन के आमादा हो जाती, तैयार हो जाएगी। लेकिन इमारत को ढाना भी एक तदरीजी अमल है। लेकिन ढाना निस्बतन बनाने के जल्दी, यानी ढा देना जल्दी मुमकिन है लेकिन तदरीजी अमल है, ढा देना भी तदरीजी है। फौरन फौरन एक एक, एक लहजे में, एक लम्हे में नहीं डाल सकते, उसमें भी तदरीज है। तदरीज लेकिन ऐसी तदरीज है जो जल्दी। इसीलिए मस्जिद का सबसे अहम बात यह कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले रसूल खुदा ने एतमाद हासिल किया मक्के के लोगों का, एक बात को मनवाने के लिए, सिर्फ एक बात को मनवाने के लिए 40 साल तक रसूल खुदा की मेहनत। देखिए एतमाद जल्दी हासिल नहीं होगा लोगों के दरमियान, एतमाद हासिल करने के लिए वक्त लगता। जिंदगी भर रसूल खुदा ने कभी गलत बयानी से काम नहीं लिया, जिसके नतीजे में 40 साल के बाद रसूल खुदा जब एक पहाड़ पर तशरीफ ले गए और वहां जाकर उन्होंने कहा कि अगर मैं ये कहूं तुम लोगों को कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है जो तुम पर हमला करना चाहता है, क्या तुम मेरी बात पर यकीन कर लोगे? तो सबने कहा बेशक हम आपकी बात पर यकीन कर लेंगे। क्यों वो लोग ये कह रहे थे कि रसूल, यानी क्यों उन्होंने फौरन रसूल खुदा की बात मान ली? क्योंकि रसूल खुदा 40 साल तक सादिक और अमीन होने का कलमा पढ़वा करे, यानी 40 साल की मुद्दत एक मामूली मुद्दत नहीं है। 40 साल की मुद्दत तक रसूल खुदा ने कभी गलत बयानी से काम नहीं लिया, जिसकी वजह से मक्के का जाहिल अरब भी रसूल खुदा की सदाकत और अमानत का कलमा पढ़ा। ये एतमाद हासिल करने के बाद रसूल खुदा ने उनसे जाहिली रसूम को छुड़वा है, जमाने जाहिलियत के अकदार को छुड़वा दिए। और जमाने जाहिलियत के अकदार को अरब, मक्के के अरबों ने कोई एक दिन में नहीं छोड़ दिया, एक वक्त लगा, एक तदरीजी अमल है, एक तदरीजी अमल है। मक्के के अरबों ने जमाने जाहिलियत के अकदार को खुदा हाफिजी कर दी और फिर धीरे धीरे इस्लामी अकदार उनके आ गए। अजीजा ने मतलब किसी चीज का ईजाद करना, किसी चीज को मारज वजूद में लाना एक मरहला है, मारज वजूद में लाने के बाद उसकी बका की कोशिश करना एक दूसरा मरहला है। मस्जिद बना देना आसान है, मस्जिद बना देना आसान है, मस्जिद को आबाद करना सख्त काम, बच्चा दुनिया में मुतवल्लिद कर देना आसान है, लेकिन बच्चे की बका के असबाब फराहम करना सख्त है, खुद बच्चे की विलादत से सख्त काम है। जितना खर्चा बच्चे की विलादत में आता है उससे ज्यादा खर्चा बच्चे के परवरिश में लगता है, बच्चे की बका में लगता है। रसूल खुदा ने अकदार इजाद किए, इस्लामी अकदार इजाद किए, और जब तक रसूल खुदा की आंख बंदेगी उस वक्त तक इन अकदार की हिफाजत भी फरमाते रहे, उन अकदार की बका का सामान भी फराहम किया रसूल खुदा ने, अकदार की हिफाजत भी फरमाते, न सिर्फ ये अकदार इजाद किए, अकदार की हिफाजत का भी सामान आपने फराहम किया, अकदार की बका का भी सामान आपने फराहम किया। लेकिन मुश्किल कहां से पैदा हुई? मुश्किल पैदा हुई रसूल खुदा की रहलत के बाद। जैसे ही रसूल खुदा की रहलत हुई, वो निजाम जो अल्लाह ने मुसलमानों के लिए रसूल खुदा की रहलत के बाद दिया था, मुसलमानों ने अल्लाह के उस हुक्म से रुगर्दानी कर ली थी। तो अब ये जो रसूल खुदा की जानिब से जो ईजाद शुदा जो निजाम अकदार था, उस अकदार की बका का इंतजाम नहीं हो सका, क्योंकि वो हुक्म जो खुदा की तरफ से था वो क्या हुक्म था? रसूल खुदा की रहलत के बाद वो क्या हुक्म था? वो अल्लाह की तरफ से मुसलमानों की तमाम उमूर किसकी तरफ सौंपे गए? इमामत की तरफ। तो इमामत के निजाम से रुगर्दानी करने के नतीजे में ये हुआ कि अकदार की बका का निजाम खत्म हो गया, चूंकि इमामत एक ऐसा निजाम है जिसमें अकदार की हिफाजत हो सकती थी। अलबत्ता इमामत भी कोई मुजज़े से अकदार की हिफाजत नहीं करती, इमाम को भी कोशिश करना पड़ता अकदार की हिफाजत के लिए, अकदार की बका के लिए कोशिश करना पड़ता, जहमत उठानी पड़ती, मेहनत करना पड़ता, तब जाके अकदार बचते। तो रसूल खुदा ने अकदार इजाद कर दिए और बका के भी जामिन रहे। इसीलिए क्या हजरत गुलाम में क्या फरमाते हैं, हजरत अली मोमिनीन अली अलैहि सलाम, हमारे लिए सबसे सख्त तरीन मरहला रसूल खुदा की रहलत थी, सबसे मुश्किल मरहला हम लोगों के लिए रसूल खुदा की रहलत थी। ये कोई जज्बात या एहसासात जुमला नहीं हजरत का, क्योंकि रसूल खुदा निजाम के ईजाद करने वाले और निजाम के बका के जामिन थे। इस वजह से हजरत को यह कहना पड़ा कि रसूल खुदा के रहलत कर जाने के बाद हमारा गोया सहारा टूट गया, हमारा सहारा खत्म हो गया, हम लोगों की धारस खत्म हो गई, क्योंकि रसूल खुदा अकदार के ईजाद करने वाले भी थे और अकदार की बका के जामिन भी थे। लेकिन रसूल खुदा की रहलत के बाद जो कि उम्मत रुगर्दानी कर गए, उम्मत ने जो है असल उस निजाम से मुंह फेर लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अकदार का निजाम दबाव के रह गया। पहली खिलाफत आई, दूसरी खिलाफत आई, तीसरी खिलाफत में रसूल खुदा की रहलत से लेकर तीसरी खिलाफत तक आप देख लें कितना फासला आ गया। तीसरी खिलाफत के जमाने में जब तीसरे खलीफा को खत्म कर दिया गया, तो उस जमाने में बाद सहाबा के नजदीक बाद सहाबा के घरों से इतना सोना और इतना चांदी और इतना माले जनीमत निकला कि मजदूरों को सोना चांदी ढोना पड़ा था, और माहिरी ने हिसाब किताब को बुलाया गया था कि इनके मरने के बाद इनका माल कितना है उसका हिसाब किताब कर। सहाबियों के नाम लिए जा सकते हैं जिनके पास से ऐसा माल मिला, क्या जो रसूल खुदा के साथ जब ये लोग जंग करने गए थे ये सहाबी, इनके पास लड़ने के लिए लोग अपनी तलवार मौजूद नहीं थी, किसी के पास अपनी सवारी नहीं थी, फिर इतने कम अरसे में इतना माल दौलत कहां से जमा हो गया इनके पास? अकदार पलट दिए गए। इब्तिदाए इस्लाम में जिसके पास ज्यादा माल दौलत होती थी, मुसलमान उसको शक की निगाह से देखते थे, इसके पास इतना सरमाया कहां से इकट्ठा हो गया, यानी सच्चा मुसलमान नहीं, ये शख्स सच्चा मुसलमान नहीं है, इसके पास इतना सरमाया कहां से जमा हो गया? सरमाया जमा करना गलत बात नहीं है, مال و دولت جمع کرنا غلط بات نہیں ہے، لیکن مال و دولت کے لیے جینا مرنا یہ غلط بات ہے، یہ اسلامی اقدار کے خلاف ہے، یہ اسلامی اقدار کے خلاف ہے۔ تو جو اقدار کا نظام رسول خدا نے ایجاد کیا تھا، وہ اقدار کا نظام رسول خدا کی رحلت کے بعد باقی نہیں رہ سکا، یہاں تک کہ تیسری خلافت کے زمانے میں صحابیوں کے پاس سے کثیر سرمایہ نکلا، بہت بڑا سرمایہ، جس کا حساب کتاب کرنے کے لیے ماہرین حساب کتاب کو بلایا گیا، ماہر لوگوں کو جو حساب کتاب کرنے کے ماہر ہوتے ان کو بلایا گیا تاکہ حساب کتاب کر کے حساب لگائے کہ کس کا کتنا کتنی میراث بنی۔ تو یہ جو مسلمانوں کے اندر انحطاط آیا، مسلمان دور جاہلیت کے اقدار کی طرف جو پڑھتے، دور جاہلیت میں دیکھیے ایک مثال عرض کرتا ہوں، جو دور جاہلیت کی اقدار کی ایک مثال، دور جاہلیت کے اقدار کی ایک مثال یہ ہے کہ دور جاہلیت میں جو معیار اقدار تھا وہ انسان کا بدن، جسمانی لذتیں، جس حد تک بھی انسان جسمانی لذتوں سے بہرامند ہو سکے، یہی زمانے جاہلیت کے دور کی اقدار تھی۔ حتیٰ زمانے جاہلیت کے مذہبی مراسم کا دار مدار بھی جسمانی لذت پر ہی تھا، یعنی اگر کوئی مذہبی مراسم بھی انجام دیتے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی جسمانی لذت کا حصول کے لیے ضروری تھا رکھنا، یعنی ان کا پورے معیار، یعنی ان کی اقدار کا پورا معیار، پورا دار مدار انسان کا بدن، جس روح سے کوئی تعلق نہیں، ان کی تمام تر جنگیں اسی بدنی لذتوں کے واسطے ہوتی تھی، ان کی تمام تر جھگڑے اسی بدنی لذتوں کے واسطے ہوتی تھی، ان کے حتیٰ مذہبی مراسم ان کے جسمانی لذتوں کے لیے ہوا کرتے۔ لیکن جیسے رسول خدا آئے، رسول خدا نے 180 درجہ اقدار کو پھرا دیا، بدل دیا رسول خدا نے، یعنی جہاں پر انسان جسم کو اتنی اہمیت دیتا تھا، جسمانی لذتوں کو اتنی اہمیت دیتا تھا، مکے سے ہجرت کر کے جب مہاجرین مدینہ پہنچے تو مدینے کے لوگوں نے اس بات کا اپنا شرف محسوس کیا کہ وہ اپنے پاس جو کچھ ہے وہ مہاجرین کو دے کر مہاجرین کی سطح پر زندگی بسر کرے، اور مہاجرین کی یہ حال بھی، ایک کھجور آتا تھا کیسے تو پیٹ کو تسلی دینے کے لیے ایک کھجور کو کئی لوگ چوستے تھے، ایک کھجور ہوتا تھا کئی لوگ چوستے تھے اس کو تاکہ یہ پیٹ کو تسلی دے دے کے بھر گیا ہے۔ اصحاب صفا جن کو کہا جاتا ہے، چبوترے میں جو بیٹھنے والے افراد تھے مسجد نبوی کے، وہاں رہنے کے لیے گھر رہتا، اصحاب صفا اس لیے کہا جاتا کہ رہنے کے لیے گھر رہتا، اس لیے تو چبوترے میں رہتے تھے۔ لیکن ایسے مسلمان اور رسول خدا نے ان کے اندر جو جذبہ بھر دیا تھا، نہ ان کے پاس آج کل کے دور میں سپاہی کے لیے آپ کو سب چیزیں فراہم کرنا ہے، اگر آپ کو جنگ پہ کسی کو لے کے جانا ہے تو اس کو اسلحہ دینا ہے، اس کو غذا دینا ہے، اور زخمی ہونے کے اوپر اس کو ملہم پٹی کرنا ہے، تمام طرح خرچات، اور جتنے دن وہ جنگ میں رہ رہا اتنے دن کی کفالت اس کے بیوی بچوں کی برداشت کرنا ہے۔ لیکن جب ابتدائی جنگ اسلام کی پیش آئی، مسلمانوں کے پاس نہ ہتھیار تھے، نہ خوراک تھی، یعنی بیت المال میں اتنا پیسہ نہیں تھا کہ مسلمان سپاہیوں کے لیے غذا مہیا کی جا سکے، سب اپنی غذا لے کے آئے، اور جب جنگ میں پہنچتے تھے لڑنے کے لیے تو رسول خدا سے ان کی ایک ہی خواہش ہوا کرتی تھی، آپ یہ دعا کیجیے ہم شہید ہو جائیں، آپ یہ دعا کیجیے ہم اللہ کی راہ میں کام آ جائیں، یہ جذبے کے تحت مسلمان ہوتے ہیں۔ اور خوب جب جنگ ہو گئی کیا حاصل ہوا، مر شہید ہونے والا شہید ہو گیا، بچ جانے والا بچ گیا، بچنے والوں کو کچھ نہیں ملتا، یعنی بغیر کسی تمام، بغیر کسی لالچ اور بغیر صرف اسلام کی راہ میں کام آنے کے جذبے کے تحت لڑتے رہے۔ پھر کیا بات ہو گئی کہ کربلا میں یہ لوگ جمع ہو گئے رسول خدا کے مقابلے، رسول خدا کے نواسے کے مقابلے، تو ان کی بازگشت ہو گئی، پلٹ گئے، رجعت ہو گئی، اس طرف رجعت ہو گئی، اسلامی اقدار سے ان کی رجعت ہو گئی، وہی دور جاہلیت کے اقدار میں، دور جاہلیت میں انسان جس کے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہوتا تھا وہ سب سے محترم انسان ہوتا تھا، مکے میں سب سے زیادہ جن کے پاس پیسہ تھا وہ ابو سفیان تھا، ابو جہل تھا، مغیرہ تھا، ابو لہب تھا، اور مکے کے محترم ترین افراد یہی تھے، ان کی سب سے زیادہ عزت ہوتی تھی کیونکہ ان کے پاس پیسہ بہت زیادہ تھا. اگر کسی گھر میں ابو سفیان آ جاتا تو لوگ ایک سال تک ذکر کرتے تھے کہ ابو سفیان ہمارے گھر میں آئے. مکے کی بہت ہی محترم شخصیت ابو سفیان ہمارے گھر میں آئے، ایک سال تک اس کا ذکر ہوتا تھا. اور جس کے پاس اونٹ سب سے زیادہ ہوتے تھے، گھوڑے کے سوار، وہ زمانے کی سواریاں تھیں، جن کے پاس اونٹ اور گھوڑے زیادہ ہوتے تھے ان کی عزت اتنی زیادہ ہوتی تھی. گرچہ اس زمانے میں وہ گھوڑے جا کے گاڑیوں میں تبدیل ہو گئے، آج جس کے پاس گاڑی اور جس حد تک اچھی گاڑی ہے اس حد تک محترم ہے. آج دیکھیں ہمارے لیے اردار یہی بن چکے ہیں، ہمارے لیے ہمارے پاس کس کی عزت ہوتی، ہمارے پاس اس کی عزت ہوتی جس کے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہے، ہمارے پاس اس کی عزت ہوتی جس کے پاس سب سے قیمتی اور کئی گاڑیاں ہیں، ہمارے پاس عزت اس کی ہوتی جس کے پاس طاقت ہے ظلم کرنے کے لیے، طاقت ظلم کرنے کے لیے، ستم کھانے کے لیے. ابو سفیان کے پاس ستم کھانے کے لیے کافی طاقت تھی، کافی زور تھا، کافی اس کے پاس ہتھیار رکھنے والے سپاہی، مسلح گھومنے والے لوگ. آج ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں نہیں، آج ہمارے معاشرے میں طاقت کی پوجا نہیں. شرم کی بات ہے کہ ایک جاگیر پاکستان سے حیدرآباد آیا، اس کو حیدرآباد کے سب سے بڑے گھٹنے کے گھر پہ حاضری دینے کے لیے لے جایا گیا، فیس بک پہ فوٹو ڈالی. یہ اللہ رحمان حسین کے نام پر گنڈوں کی پوجا، ایک گنڈا کسی ماتم کی دستے میں آ جاتا ماتم روک دیا جاتا، ماتم کو روک کے گنڈے کا استقبال کر کے نوحے خان کے پاس لا کے ٹھہرایا جاتا. یہ ہمارے اللہ رحمان. تو پھر اللہ نے جاہری میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ اور اگر آج ہم پر امام حسین کی بات کا اثر نہیں ہو رہا تو تعجب کی بات کیا ہے؟ آج ہمارے اوپر اخبار اعمال کا اثر نہیں ہو رہا تو تعجب کی بات کیا ہے؟ دور جاہلیت کے تمام اثر ہمارے اندر موجود ہیں. دور جاہلیت گنڈوں کی پرستش، گنڈوں کو بڑا چڑھا کر پیش کرنا، تو زمانے جاہلیت کے اقدار یہ تھے، یعنی ان کی پوری اقدار کا دار و مدار انسان کی بدنی لذات، جسمانی لذات پر ٹکا ہوا. تو ایسے میں لازمی بات تھی وہ لوگ ان کا پلٹ جانا، اور ایک دو دن میں نہیں پلٹے، 50 سال کے عرصے میں وہ لوگ پلٹے، اور اس حد تک پلٹے، اس حد تک شکل و خلق ہو گئے، اس حد تک مال و دولت کے پجاری ہو گئے کہ رسول خدا کے نواسے کو قتل کرنے میں دریغ نہیں کیا. اور ان میں ایک بھی ایسا نہیں تھا جو مال غنیمت کی لالچ میں کربلا نہ آیا. آپ دیکھ لیجیے شروع سے آ کر سر لے کے یہ لوگ کیوں پہنچے تھے، سر لے کے جانے کی کیا ضرورت تھی شام کو اور روپے کو، کہ امیر سے ہم کو انعام حاصل کرنا ہے، ہم نے جو کارنامہ انجام دیا ہے انعام حاصل کرنا ہے. دوسرے دور خلافت میں کہتے ہیں کہ اسلام بہت زیادہ پھیلا، کئی ملکوں پر اسلام نے فتح مندی حاصل کی. یہ بات صحیح ہے کہ اسلام نے دوسری خلافت میں بہت زیادہ فتوحات حاصل کی، لیکن ایک محاذ پر اسلام کامیاب ہوتا رہا اور دوسرے محاذ پر اسلام شکست کھاتا رہا. ملک تو آپ نے قبضہ کر لیا لیکن لوگوں کے اقدار پر آپ کا غلبہ نہ ہو سکا، لوگوں کے اقدار شکست پذیر ہو گئے، لوگوں کے اقدار تباہ و برباد ہو گئے، اقدار کی طرف توجہ نہیں کر سکی. اگر یہ جو حکم خدا تھا کہ رسول خدا کے بعد جو نظام امامت کو اپنانا تھا اگر اس پر عمل ہو جاتا تو اقدار پر بھی غلبہ حاصل ہو جاتا. تم نے فتوحات تو بہت زیادہ کر لی لیکن اقدار کو کہاں، اقدار کہاں پہنچ گئی مسلمانوں کی اقدار کی. کئی لوگ جو غیر مسلم تھے جب مسلمان ہوتے تھے ان کو اقدار کی طرف کوئی توجہ نہیں دلائی جاتی. اس وقت کی حکومت کا کام تھا کہ مسلمانوں کو اقدار کی طرف توجہ دلائے لیکن نہ دلا سکے کیونکہ نظام امامت سے دور ہو گئے، امامت کے نظام سے ہٹ گئے، جس کے نتیجے میں اقدار کا دیوالیہ نکل گیا. اقدار کا دیوالیہ نکلنے کے نتیجے میں ایسے لوگ کربلا میں آ کے جمع ہوئے رسول خدا کے نواسے کے مقابلے میں. اور जो सबसे अहम बात है कि अकदार को लोगों तक मुंतकिल करने का काम दिल जिगर का काम अंबिया का काम। एक दिन में आप किसी को अकदार की गोली खोलकर मिला नहीं दे सकते। अकदार एक तदरीजी अमल है, एक एक आदमी पर काम होने की जरूरत है, एक एक आदमी पर वक्त सर्फ किए जाने की जरूरत है ताकि अकदार जिंदा हो। तो अजीजा ने मोहतरम आज की गुफ्तगू का खुलासा यह है कि नमाजें पढ़ने के बावजूद, रोजे रखने के बावजूद, इस्लामी बाज इस्लामी जंगों में कुर्बानियां देने के बावजूद क्या हुआ था इन अफराद को जो इमाम हुसैन के मुकाबले में आ गए। तो एक जुमला है या एक लफ्ज़ में अगर उसको कहना चाहें तो कहना चाहें पलट गए थे। किस बात से पलट गए थे? इस्लामी अकदार से पलट कर जाहिली अकदार को अपना लिए थे। जाहिली अकदार को खत्म करना रसूल खुदा का काम है। रसूल खुदा की जहमतों की वजह से जाहिली अकदार, आप अंदाजा लगाइए आज के दौर में, आज के दौर को उस दौर से मुकायसा कर लीजिए। आज का दौर 1400 साल बाद आज अकदार को जिंदा करने वालों के लिए खून जिगर देना पड़ रहा, तो उस जमाने में रसूल खुदा को कैसी तकलीफ और कैसी। इसीलिए रसूल खुदा ने फरमाया कि जितनी अजियत मैंने बर्दाश्त की उसने उतनी अजियत किसी ने बर्दाश्त नहीं। तो अकदार को लोगों तक जमाने जाहिलियत के अरबों तक मुंतकिल करना ये आसान काम नहीं, एक सख्त मरहला था। लेकिन रसूल खुदा ने मरहले को तय किया और अकदार के निज़ाम को बाकी भी रखा। लेकिन रसूल खुदा की रहलत के बाद तदरीजन मुसलमान अकदार से बेबहरा होते गए, यहाँ तक कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आ गए। और ये बात हर दौर में साथ आने वाली है। तारीख कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो एक वक्त एक जमान तक महदूद हो, तारीख अपने आप को दोहराती है। और फलसफे तारीख यह है कि उससे इबरत हासिल की जाए, यानी इस वाक़े से इबरत हासिल किया जाए, इस वाक़े से यानी इन लोगों के इस अमल से माल अब यानी दूसरे दौर खिलाफत से मुसलमानों का सारा अमन वक्त गनीमत हासिल कर, यानी जंग लड़ने का यह है कि गनीमत हासिल की जाए, किसी तरह से कहीं से माल इकट्ठा हो जाए। अब मुसलमान अपनी तलवारें तेज कर रहा है ताकि रोम पर हमला करके रोम के लोगों का माल गनीमत लेकर आए। माल गनीमत का आ जाना मुसलमान का हक है, ठीक है, लेकिन माल गनीमत के लिए जंग लड़ना सही नहीं। और उस जंग लड़ने के लिए मरने के लिए भी तैयार है, क्योंकि जंग में मरना भी पड़ता है। जरूरी नहीं है कि जंग से आप जिंदा ही वापस आ जाए, हमेशा जंग में आपको खत्म भी होना पड़ता। यानी माल के लिए मर मिटने के लिए आमादा हो जाना सिर्फ माल की खातिर, ये मुसलमानों का हक होगा, ये मुसलमानों का हक होगा। तो जब ऐसी बात आ जाएगी, यानी इंसान की पूरी कोशिशों का नतीजा यह है कि चंद बदनी और जिस्मानी लज्जात उसको हासिल हो जाए, यहाँ तक कि उसके मजहबी मरासिम का दार मदार भी नहीं जिस्मानी लज्जतों पर टिका हुआ हो, तो यकीनन वो शख्स इमाम हुसैन के मुकाबले में अगर आ जाए तो फिर ताज्जुब की बात नहीं, इबरत की बात, ताज्जुब की बात नहीं बल्कि इबरत की बात। और इस वाक्य से इबरत लेने की जरूरत है कि अगर हम अकदार इस्लामी को छोड़कर जाहिली अकदार की तरफ अगर पलट जाए तो यकीनन कल जब इमाम का जरूर होगा तो खुदा न खास्ता हम मुकाबिल लश्कर के खराब पाए। आज तो हम दुआएं कर करके तो बुला रहे हैं, लेकिन कल कहीं खुदा न खास्ता लश्कर मुकाबिल में हम खराब ना पाए। तो कदम कदम पर मुसलमानों को कदम कदम पर इस्लामी अकदार की तरफ तवज्जो जरूरी है। इस्लामी निज़ाम अकदार में तकरीम का मियार धन दौलत औलाद या ताकत का होना नहीं, बल्कि इस्लामी अकदार में इस इंसान की तकरीम और इज्जत का मियार तक़वा है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाह अत्तक़ाकुम, कुरान मजीद का ऐलान, जिसकी जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है वही अल्लाह से सबसे ज्यादा, वही अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा बाइज्जत। ये मियार रसूल खुदा ने सिखलाया था मुसलमानों को, लेकिन जब वो इस मियार से दूर हो गए फिर उनके पास जाहिली अकदार लौट के आ गए, तो फिर यकीनी तौर पर उनको इमाम हुसैन के मुकाबले में आना ही था। वो आ गए और न सिर्फ आए बल्कि वो जिनायत भी अंजाम दे दी जिसकी पेशी हुई रसूल। آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما میں عراق کی طرف جا رہا ہوں. جیسے ہی امام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں عراق کی طرف جا رہا ہوں، حضرت ام المومنین ام سلمہ آنسو بہانے لگی، بڑی بیتاب ہو گئی، بڑی بیتابی سے گریا فرمانے لگی. اس وقت امام حسین نے پوچھا کہ نانی اما آخر کیا بات ہو گئی کہ آپ گریا فرما رہی ہیں؟ اس وقت حضرت ام سلمہ نے کہا بیٹا میں نے رسول خدا سے یہ سنا ہے کہ جس وقت حسین عراق کا ارادہ کر گئے تو یہ سمجھ لینا کہ حسین اب پلٹ کے آنے والا نہیں. حسین اب پلٹ کے آنے والا نہیں. جیسے ہی حضرت ام سلمہ نے یہ کہا تو امام حسین علیہ السلام نے کہا نانی اما میں اپنی شہادت سے باخبر ہوں، میں جانتا ہوں کہ مجھے شہید کر دیا جائے گا، میں عراق کی طرف جاؤں گا. اس وقت امام حسین علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ سے کہا کہ آپ دیکھنا چاہیں گے تو زمین جہاں پر میں شہید ہونے والا ہوں؟ تو حضرت ام سلمہ نے دیکھنے کی خواہش جب ظاہر کی تو امام حسین علیہ السلام نے اشارہ کیا تو ساری زمین پست ہو گئی، کربلا کی زمین بلند ہو گئی. کربلا کی زمین سے چند مٹھی خاک، ایک مٹھی خاک اٹھا کر امام حسین علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ کو دیا اور یہ فرمایا کہ نانی اما جب